इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इतिहास का वर्तमान स्वरूप विकसित विधियों से निरंतर परिष्कृत एवं परिमार्जित हो रहा है। सूक्ष्म विवेचना की आधुनिकतम प्रणाली ने इतिहास की प्रकृति को और गहराई से समझने की प्रेरणा दी है। अनेक विद्वानों का मत है कि इतिहास को विज्ञान का स्तर या दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इतिहास के कला स्वरूप की आलोचना करते हुए प्रोफेसर जे वी ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास को जब तक कला का स्वरूप प्राप्त रहेगा, तब तक इतिहास में सत्यता एवं यथार्थता की प्राण प्रतिष्ठापन कठिन होगी। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। इतिहास को वैज्ञानिकता का स्वरूप प्रदान करने के लिए जर्मनी के विद्वानों के नेतृत्व में एक अभियान प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में इस अभियान का प्रवर्तक सर्वप्रथम प्रोफेसर जे बी ब्यूरी ने सन 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह के अभिभाषण पर कहा था कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इतिहास को एक वैज्ञानिक विधा के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। ट्रेविलियन का कथन है कि साइंस हैड ट्रांसमुटेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मैनकाइंड एंड रिवोल्यूशनाइज्ड द रिलीजियस एंड कॉस्मोलॉजिकल आउटलुक ऑफ द एडुकेटेड वर्ल्ड। दीज एस्टोनिशिंग अचीवमेंट्स ऑफ फिजिकल साइंस आई लेड मेनी हिस्टोरियंस 50 years अगो टू सपोज दैट द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री वुड बी ग्रेटली इनहेंस्ड इट हिस्ट्री वाज कॉल्ड ए साइंस। अर्थात विज्ञान ने मानव जाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर शिक्षित समाज के धार्मिक एवं ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। भौतिक विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों के 50 वर्ष पूर्व अनेक इतिहासकारों को विचार विमर्श के लिए बाध्य किया कि अन्य विधियों को त्याग कर इतिहास को वैज्ञानिक उपहासों से परिष्कृत किया जाए तथा उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों तथा आदर्शों का प्रयोग किया जाए, जिससे निश्चितता इतिहास की उपयोगिता एवं महत्व में वृद्धि होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यार्क पावेल ने भी श्री ब्यूरी के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि आधुनिक इतिहास उन विद्वानों द्वारा लिखा गया है जिनका विश्वास है कि इतिहास रोचक, उपदेशात्मक तथा मनोरंजक विवरण नहीं वरन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। लोगलियाओ ने विज्ञान को परिभाषित किया कि विज्ञान समय तथा संप्रयास को सीमित कर तथ्यों के ज्ञान का एक साधन है, जिसके माध्यम से तथ्य संबंधी तत्वों को एकत्रित कर स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाते हैं। ओसे आर्तेगाई गैसे का कथन है कि इतिहास मेरे जीवन का सुव्यवस्थित विज्ञान है, अतः इसे वर्तमान विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। कालिंगवुड का मत है कि इतिहास एक प्रकार का शोध है, इसका संबंध विज्ञान से है, इसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा प्रकृति संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। इतिहास की वैज्ञानिकता को बिक्को, कामटे एवं स्पेंगलर आदि ने स्वीकारते हुए यह कहा कि इतिहास के विकासात्मक निश्चित नियम है, जिनसे होकर सभ्यता को निश्चित स्तरों से जाना पड़ता है। बिक्के और कामटे ने विकास के 3 स्तरों को स्वीकारा है और स्पेंगलर ने 4 स्तरों को स्वीकारा है। प्रोफेसर वाल्स ने विज्ञान की अनुलिखित अनिवार्यता स्वीकार की है। पहला, विज्ञान एक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान है। दूसरा समान तथ्यों का संकलन होता है। तीसरा भविष्य कथन में समर्थ होता है। चौथा शिक्षा प्रद है। पांचवा वस्तुनिष्ठ है और तथ्यों से प्रमाणित किया जा सकता है जो निर्भ्रांत स्वीकार हो। अतः इतिहास की वैज्ञानिकता उपयुक्त निष्कर्ष पर विद्वानों ने प्रमाणित करने का प्रयास किया है। पहला इतिहास सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान है। प्रोफेसर वाल्स का मत है कि इतिहास अपनी विशिष्ट विधि एवं प्रविधि के कारण एक वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि इतिहासकार ऐतिहासिक विषयों अर्थात वस्तुओं का निष्कर्ष सामान्य नियम एवं साक्ष्यों के सूक्ष्म दर्शन पर नवीन विधियों द्वारा निकालता है। अतः ऐतिहासिक विचारण वैज्ञानिक विचारण के समान है। इतिहास की तुलना हम विज्ञान से नहीं वरन प्रायोगिक विज्ञान अभियांत्रिक से कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में दोनों का उद्देश्य किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है, अतः विज्ञान की श्रेणी में इतिहास को रखा जा सकता है। ए एल राउज ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा है कि विज्ञान की भांति इतिहास में यथार्थता की गवेषणा वस्तुगत क्रमबद्ध विधियों एवं सुव्यवस्थित नियमों के माध्यम से किया जाता है। अतः इतिहास भी एक क्रमबद्ध विज्ञान है। आदिवासी मानव समाज का अध्ययन इतिहासकार वैज्ञानिक की भांति कर सकता है। इतिहास में कतिपय विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण अनिवार्य है। इतिहास, इतिहास चिंतन, इतिहास अध्ययन तथा इतिहास लेखन में बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग आवश्यक है। यद्यपि इतिहासकार दूरवीक्षक अथवा सूक्ष्म वीक्षक यंत्रों का प्रयोग नहीं करता, परंतु उसके दोनों नेत्र और ज्ञान इंद्रियां तथ्यों के सूक्ष्म विवेचन में सदैव क्रियाशील रहती है। इस प्रकार इतिहास की एक दृष्टि विश्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक है तथा दूसरी चयनात्मक तथा सौंदर्य शास्त्रीय है। डिल्थे ने स्पष्ट कहा है कि विज्ञान प्रकृति का तथा इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है तथा प्रकृति के परिवेश में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन इतिहास है। इस प्रकार ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन की विधाएं समान बन जाती हैं। सीलर ने भी इतिहास में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को स्वीकारा है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य समान हैं। उसके अनुसार वैज्ञानिक विधि ज्ञान की एक आम विधि है, इसीलिए इतिहास में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अनिवार्य है। दूसरा समान तथ्यों का संकलन। ई एच कार के अनुसार हिस्ट्री इज कंक्रीनेटेड विथ द रिलेशन बिटवीन यूनिक्वाई एंड जेनरल, अर्थात विशेष और समान का संबंध ही इतिहास है। एक्टन ने कहा कि यह कहना व्यर्थ है कि इतिहास में सामान्य का समावेश नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि इतिहास का निर्माण सामान्य के आधार पर ही होता है। एल्टन ने भी सामान्यीकरण को इतिहास का अभिन्न अंग स्वीकारा है। उसके अनुसार इतिहासकार तथा ऐतिहासिक तथ्यों के संकलनकर्ता में अंतर का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। कॉलिंगवुड का कथन है कि इतिहास में विशेष का अध्ययन करते हुए समान तथ्यों को प्राथमिकता दी जाती है, यथा पुलोपोनेशियन तथा द्वितीय महायुद्ध विशेष तथा एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन इतिहासकार इस सामान्य का समावेश करने के लिए दोनों को युद्ध की संज्ञा देता है। इस प्रकार यहाँ पर विशेष का सामान्यीकरण किया गया है। आधुनिक इतिहासकार फ्रांस, रूस और चीन की क्रांति का वर्णन करते हुए अपने तथ्यों को सामान्यीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु ने इतिहास में सामान्यीकरण के प्रश्न को उठाया था। राउज का कथन है कि इतिहास का संबंध विशेष से रहता है, फिर भी इसमें सामान्यीकरण के तत्व होते हैं। एक्टन ने सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि सत्ता सर्वशक्ति संपन्न को भ्रष्ट करती है और सर्वशक्ति संपन्न सत्ता को पूर्णतया भ्रष्ट करता है। एक्टन का यह सिद्धांत सामान्यीकरण के सिद्धांत के आधार पर अन्य शासकों के संबंध में भी लागू होता है। अतः सामान्यीकरण के आधार पर इतिहास को विज्ञान स्वीकारा जा सकता है। तीसरा, भविष्य कथन में समर्थ। इतिहास को कला मानने वाले विद्वानों का मत है कि इतिहासकार भावी घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है, परंतु प्रोफेसर वाल्स का कथन है कि घटनाओं के आधार पर इतिहासकार आने वाली पीढ़ी के लिए चेतावनी दे सकता है। भावी कार्य के लिए इतिहासकार पथ प्रदर्शन करता है। एक वैज्ञानिक की भांति इतिहासकार भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु घटनाओं और परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से भावी घटना का संकेत करता है, क्योंकि पुनरावृत्ति का ही परिणाम सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होता है। इसीलिए कार्ल आख्या पर का कथन है कि वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता है और इतिहासकार परिस्थितियों के संदर्भ में भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार इतिहासकार की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। चौथा, इतिहास शिक्षाप्रद है। कतिपय विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान की भांति शिक्षाप्रद नहीं माना है। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। चार्ल्स फर्थ का भी मत है कि इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है, क्योंकि इतिहास भी एक प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। अपने विचार की पुष्टि में उन्होंने सर वाल्टर रेले के तर्क को प्रस्तुत किया है कि इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों से ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो हमारी इच्छाओं तथा कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। प्राचीन यूनानी तथा रोम सभ्यता का प्रभाव यूरोप की सभ्यता पर पड़ा और इन सभ्यताओं ने यूरोप को नया पाठ पढ़ाया। 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में यूरोप की जनता ने शिक्षा प्राप्ति के लिए ही ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन किया। ग्रोट ने अपने यूनान के इतिहास में स्पष्ट किया कि एंथेस में प्रचलित प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली यूरोप के देशों को ही नहीं अपितु विश्व के देशों को एक नई शिक्षा दी। रूस की क्रांति के समय वहां के विशिष्ट नेताओं ने फ्रांस की 1719, 1830 तथा 1848 ईस्वी की राज क्रांतियों से शिक्षा ग्रहण की तथा रूस की अराजकता और अव्यवस्था से पीड़ित नागरिक के रक्षार्थ उन लोगों ने पेरिस थक्यूटन से शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार संपूर्ण सार्वभौमिक इतिहास की शिक्षाओं से भरा है। अतः इतिहास शिक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। पांचवा, वस्तुनिष्ठता। विज्ञान की प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता की है, जिसके निष्कर्ष को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की जाती है। उचित प्रमाणों तथा साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष को सभी स्वीकारते हैं, परंतु इतिहास का स्वरूप विषयनिष्ठ होता है। वस्तु पर अर्थ का आरोपण इतिहासकार करता है, जिसमें उसकी भावनाएं तथा व्यक्तित्व अंतर्भूत होते हैं। इतिहास की वस्तुनिष्ठता के संबंध में अगस्त कॉम्टे ने कहा कि जब इतिहासकार व्यक्तिगत भावनाओं का परित्याग कर सिद्धांत का आश्रय लेता है, तो इतिहासकार का विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठता में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास चिंतन तथा वैज्ञानिक चिंतन में यही समानता है। इतिहास क्षेत्र के अर्थशास्त्र, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, अभिलेख, वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, मृद्भांड, पुरावशेष का अध्ययन प्रागैतिहासिक एवं पुरैतिहासिक में वैज्ञानिक विधा का प्रयोग हो रहा है। विगत दशकों में इतिहास की शाखा पुरातत्व में विज्ञान का अनुप्रवेश एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। पुरातत्विक रसायन शास्त्र, आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट्री, स्मारकों के संरक्षण, चौंबिक सर्वेक्षण, मैग्नेटिक सर्वे, प्रोगार चौहद, कार्बन 14 तथा तिथि निर्धारण, मुद्रा विश्लेषण, वैद्युत रोधी सर्वेक्षण, इलेक्ट्रिकल रिसीटिंग सर्वेविंग द्वारा भूमिक्षण, वृक्ष वलय, तिथि अभिज्ञान और सौर विकिरण वक्रता, यांत्रिक उत्खनन, आलोक चित्रण, पूरा जल विज्ञान, पारिस्थिति, भूमि आकारिक, पूरा वनस्पति का प्रयोग इतिहास में किया जा रहा है, जिससे उसका स्वरूप वस्तुनिष्ठात्मक होकर वैज्ञानिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है। अतः प्राग ऐतिहासिक, पूरे ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन में वैज्ञानिक साधनों और विधियों का प्रयोग पर्याप्त रूप से किया जा रहा है, जिससे विज्ञान की भांति इतिहास में यथार्थता तथा क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। एडम स्मिथ ने लिखा है, इतिहासकार अतीत में मानव जाति के जीवन तथा कार्यों से संबंधित कार्यों की विवेचना, संबंधित यथार्थ तथ्यों का क्रमबद्ध सुनिश्चित नियमानुसार करे तो इतिहास की तुलना भौतिक विज्ञान से की जा सकती है। ट्रेविलियन का भी मत है कि इतिहासकार का कर्तव्य तथ्यों की खोज, उनका सूक्ष्म निरीक्षण, कारणों तथा प्रभावों की व्याख्या करना है। इतिहास की प्रकृति दार्शनिक है। यदि हम उक्त सभी विद्वानों के विचारों एवं कसौटियों का मंथन कर इतिहास की विज्ञान की वर्तमान रूढ़ अवधारणा के अनुसार व्याख्या करना चाहें तो शायद ही कर सकें, लेकिन ऐसे विचारों, शोधों, प्रक्रियाओं, परिणामों आदि को जो ज्ञान को विशिष्ट तत्वों से विभूषित करते हैं विज्ञान कहें तो इतिहास को निश्चित रूप से विज्ञान कहा जा सकता है। केवल उस ज्ञान को जो अपने निश्चित नियमों के आधार पर निश्चित परिणामों को देने की विशेषता रखता है भी विज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी यही विशेषता यदि इतिहास में नहीं है तो उसे विज्ञान ही नहीं कहा जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान तो है, ऐसा विज्ञान जो अपने भीतर अतीत को समेटे रखकर वर्तमान को झकझोर सकता है, उसकी धारा को मोड़ सकता है तथा भविष्य में ऐसे इतिहास की रचना कर सकता है जिसकी परंपरात्मक स्थितियों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि इस तरह के उदाहरण देखे जाएं तो हमें वर्तमान विश्व में कई राष्ट्रों के ऐसे इतिहास मिल जाएंगे जिनकी इतिहास परंपरा को ही इतिहास की नई व्याख्याओं ने बदल दिया। इतिहास ने अर्थ है। ने अर्थ का अर्थ है कि ऐसी अभ्यर्थना जो अपनी मूलवता के कारण ने रहनीय अथवा धारणीय होती है। अभ्यर्थना से हमारा तात्पर्य अन्वेषणार्थ से है। अन्वेषण स्वभावतः मूल्यवान होता है, परिणामतः नेय भी है। नेयता अतीत और वर्तमान का भविष्य के लिए धारण करना है और अन्वेष्यता भविष्य का वर्तमान में धारण है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं और यह सापेक्षता काल के ऐतिहासिक होने के लिए अनिवार्य है। अतीत भविष्य के लिए और भविष्य के अतीत में धारणा किए हुए बिना काल केवल प्रतिबिंबित वर्तमान होता है। प्रतिबिंबित वर्तमान के अर्थ में कालिकता जीव धर्म है जो उसे अजीव से पृथक करता है, किंतु अर्थानुपुष्टि कालिकता मनुष्य की विशेषता है। यही इतिहास का दर्शन है। विचार अथवा चिंतन अपरुषेय होता है। विचार विचार है, वह न तो समाजवादी होता है और न साम्यवादी। जिस प्रकार शब्द आकाश का गुण है, उसी प्रकार विचार मनुष्य का विशेष लक्षण है। विचार मानव व्यापी होता है, ज्ञान वस्तुपत्र होता है। किसी की बुद्धि में वह अभिव्यक्त होता है और किसी के वाणी से वह प्रकट होता है। इतिहासकार वस्तुतंत्रीय ज्ञान को अभिव्यक्ति देता है, परंतु विचारों में जब आग्रह आ जाता है तो वह बाद में परिणत हो जाता है। आज के युग की समस्या न तो उतनी आर्थिक या राजनैतिक है जितना कि वैचारिक है। विचार ही दर्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इतिहास के क्षेत्र में भी वाल्टेयर, वीको तथा हर्डर ने अपनी रचना आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री मैनकाइंड द्वारा इतिहास दर्शन को प्रस्तुत किया तथा हीगल ने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास को गुड विषय के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वाल्टेयर ने इतिहास दर्शन का अभिप्राय वैज्ञानिक अथवा विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा इतिहास को प्रस्तुत करना स्वीकारा। वस्तुतः इतिहास दर्शन इतिहास चिंतन की एक विधि है। उनके अनुसार इतिहास दर्शन अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। इतिहास दर्शन घटनाओं में एक घटना मात्र को देखता है, जबकि इतिहास दर्शन के प्रमाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीतकालिक घटनाओं में निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचारों को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरूपित करना मात्र होता है। स्पेंसर के अनुसार विज्ञान अंशतः एकीकृत ज्ञान है और दर्शन पूर्णतया एकीकृत ज्ञान है। यह वह ज्ञान है जिसकी उत्पत्ति विभिन्न विज्ञानों द्वारा दिए हुए ज्ञानों के एक समष्टि रूप में मिश्रित होने से होती है। जिस प्रकार विज्ञान के अधिक व्यापक सामान्य कथन अपने क्षेत्र के संकीर्ण अथवा कम व्यापक सामान्य कथनों को एकता में आबद्ध कर देते हैं, वैसे ही दर्शन के सामान्य कथन विज्ञान के व्यापकता सामान्य कथनों को एकता में ग्रथित कर देते हैं। दर्शन शास्त्र का काम एक ऐसी सर्वसामवेशी निगमनात्मक पद्धति का निर्माण करना है, जिसे विभिन्न वैज्ञानिक नियम पद्धतियों के ऊपर स्थापित किया जा सके। हीगल और मार्क्स की पद्धतियां भी, जो क्रमशः आदर्शवादी तथा भौतिकवादी हैं, इसी कोटि में आती हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ने ही ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने की कोशिश की है जो भौतिक तथा जैविक जगत पर जितने लागू हैं उतने ही ऐतिहासिक सामाजिक घटना श्रृंखला पर भी। भौतिक विज्ञान के नियम गणित के समीकरणों के रूप में प्रतिपादित किए जाते हैं। निगमन विधि का प्रयोग करते हुए उन्हें वैसे समीकरणों से ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु किसी भी दर्शन पद्धति ने अब तक अपने सिद्धांतों को गणित की भाषा में व्यक्त करने का साहस नहीं किया है। जॉन डीवी ने चेतावनी दी है कि सब विज्ञानों के पारिभाषिक पदों को किसी एक विज्ञान की पदावली में परिवर्तित करके समस्त विधाओं की एकता स्थापित करने का प्रयत्न प्रारंभ से ही विफल होने को बाध्य है। यंत्रवादी भौतिकवाद यह प्रयत्न करता है कि वस्तुओं के विभिन्न प्रभावों को केवल एक प्रभाव में परिणत कर दे। इसे हम पद्धति मूलक भौतिकवाद मेथोडोलॉजिकल मैटरलिज्म कह सकते हैं। यह भौतिकवाद वस्तुओं के गुणात्मक प्रभावों को उनके मात्रगत परिवर्तनों से संबंधित कर देना चाहता है, परंतु इतिहास में यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के विचार तथा आवेग स्नायु मंडल तथा अन्य शारीरिक परिवर्तन भावना मूलक होते हैं। अतः भावना का संबंध व्यक्ति के संस्कारगत चिंतन से संबद्ध होता है, जिसकी अभिव्यक्ति ऐतिहासिक व्याख्या और स्पष्टीकरण में होती है। ऐतिहासिक ज्ञान की प्रक्रिया प्रमाणिक उपादनों की प्रक्रिया है, जो कल्पनात्मक न होकर निश्चित परमाणुसंधान है। उसका सार अनुभव मूल संभावना है और अंतर्दृष्टि परक या विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णायन है। इतिहास ज्ञान को विशेष विषयक अनुमान न कहकर उसे विशेष विषयक निर्णय कहा जा सकता है। कालिंगवुड ने भी कहा है कि इतिहास के मानसिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि इतिहास मनोविज्ञान है, वरन ऐतिहासिक ज्ञान दार्शनिक ज्ञान पर आधारित प्रक्रिया का अध्ययन है। ऐतिहासिक ज्ञान के दो स्तर होते हैं, तथ्यात्मक तथा संख्यात्मक। तथ्य से तात्पर्य किसी वास्तविक घटना को अभिध्यायक वाक्य के अर्थ से है। सत्य से अभिप्राय मूल सहित अर्थ अथवा मानवीय सार्थकता से है। आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में इतिहास समाज की एक अभिव्यक्ति है। इतिहास प्रकृति से अधिक आधारभूत है और व्यक्ति तथा समाज दोनों प्रकृति के पर्यावरण में पलते हैं। इसीलिए प्रकृति का ज्ञान स्वयं एक प्रकार से ऐतिहासिक होता है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों की एक जाति है। द्वंद्वों से ऐतिहासिक प्रक्रिया गतिशील होती है और यह द्वंद्व संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहमान है, जिसके द्वारा प्रत्येक युग में समाज के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तित समाज के इतिहासकार तथा दार्शनिक समसामायिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों से समसामायिक सामाजिक मूल्यों के अनुसार देखते हैं। इसीलिए इतिहास दर्शन भी परिवर्तित होता है। इतिहास दर्शन अनिवार्य चेतना की इतिहास रूपी प्रक्रिया की एक अवस्था है। इतिहास में अतीत अनुचिंतित है। इस प्रकार इतिहास दर्शन किसी विशेष समाज अथवा ऐतिहासिक युग के चित्त की क्रियात्मक छवि होती है। इतिहास दर्शन की पद्धति विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त होती है। इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन ऐतिहासिक ज्ञान के सामान्य रूप पर केंद्रित होता है। ज्ञान के दो मार्ग हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान तथा मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। इतिहास दर्शन है जो उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए इतिहासकार का कार्य मस्तिष्क से प्रभावित विश्व को समझना है। इस प्रकार अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का पारस्परिक संबंध ज्ञान की सनातनता का परिचायक है, जो इतिहास दर्शन के निगमागमन पद्धति द्वारा संभव है और यह निगमनात्मक पद्धति है। इतिहास की प्रकृति, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों में प्रयुक्त मानवीय बुद्धि का विश्लेषण किया जाता है, वस्तुतः ऐतिहासिक तथ्य का महत्व नहीं होता, वरन मनुष्य द्वारा किसी स्थान और समय में निर्मित किसी वस्तु अर्थात तथ्य के निर्माण में उसकी बुद्धि का प्रयोजन क्या था, बुद्धि का योग और अनुप्रवेश किसी वस्तु के निर्माण में कितना रहा, यही विश्लेषण प्रस्तुत करना इतिहासकार का कर्तव्य है। अतः इतिहास दर्शन के द्वारा ही वस्तु के विनियोग का ज्ञान किया जा सकता है। अतः इतिहास की प्रकृति दार्शनिक है। समाप्त।